ये आकाशवाणी है। अब आप रत्ना पांडे से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि लंबित मामलों को कम करना न्यायपालिका के समक्ष बड़ी चुनौती है। राष्ट्रपति ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन में कहा कि सभी हितधारकों को एकजुट होकर लंबित मामलों का समाधान तलाशना चाहिए। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण भी किया। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म जैसे घृणित अपराधों के लिए न्यायालय से निर्णय आने में एक पीढ़ी गुजर जाती है, इसी कारण आम आदमी न्यायिक प्रक्रिया में संवेदनशीलता की कमी महसूस करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंचूर ने कहा कि लंबित मामलों को कम करने के लिए गठित समिति ने इन मामलों के समाधान के लिए एक कार्ययोजना लाने की रूपरेखा तैयार की है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अपनी पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया था। तेलंगाना में लगातार बारिश से राज्य के कई इलाकों में पानी भर गया है। सरकार ने 19 जिलों में बाढ़ आने की चेतावनी जारी की है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रशासन को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और नाव से स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित निवासियों को हर जरूरी सरकारी सहायता मुहैया कराने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने राज्यभर में बारिश और बाढ़ की स्थिति पर कई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से बात की और भारी बारिश और बाढ़ को देखते हुए दोनों राज्यों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने दोनों मुख्यमंत्रियों को चुनौती से निपटने के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। गृह मंत्रालय ने गुजरात में बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकारी निदेशक के नेतृत्व में एक अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय दल का गठन किया है। ये दल जल्द ही राज्य के बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हुए जघन्य दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ तथा पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। शहर में कल भी कई रैलियां निकाली गईं। नागरिक समाज की रैली में कलाकारों, डॉक्टरों, छात्रों और आम लोगों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ पत्रकार और लेखक उमेश उपाध्याय के निधन पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया कि वरिष्ठ पत्रकार उमेश उपाध्याय का निधन पत्रकारिता जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। श्री मोदी ने दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई। विदेश मंत्रालय ने उन खबरों को गलत बताया है जिनमें दावा किया गया है कि भारत ने 6 बांग्लादेशी छात्र नेताओं पर वीजा प्रतिबंध लगाया है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि भारत ने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। कुछ मीडिया संगठनों ने बताया था कि बांग्लादेश के 6 छात्र नेताओं पर ऐसा प्रतिबंध लगाया गया है। भाजपा आज से अपना सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से सदस्यता नवीनीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके इस अभियान की शुरुआत करेंगे। सभी मौजूदा सदस्यों को अपनी सदस्यता नवीनीकृत करानी होगी। भाजपा के संविधान के अनुसार हर 5 से 6 साल में सदस्यता अभियान नए सिरे से चलाया जाता है। यह अभियान 10 नवम्बर तक कई चरणों में चलाया जाएगा। 2024 पैरालंपिक के चौथे दिन भी भारतीय दल का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। एथलेटिक्स में प्रीति पाल ने महिलाओं की 200 मीटर T35 स्पर्धा में तीसरा स्थान हासिल कर पेरिस पैरालंपिक का अपना दूसरा कांस्य पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत के कुल पदक 6 हो गए हैं, जिनमें 1 स्वर्ण 1 रजत और 4 कांस्य पदक हैं। प्रीति ने इससे पहले महिलाओं की 100 मीटर T35 स्पर्धा ने कांस्य पदक जीता था। भारतीय शटलर नितेश कुमार ने पुरुष एकल SL3 सेमीफाइनल में जापान के डाइसुके फुजिहारा को सीधे सेटों में हराकर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरी ओर सुहास इतिराज ने भारत के ही सुकांत कदम को 21-17, 21-12 से हराकर SL4 फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में यतिराज का मुकाबला टोक्यो पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता लुकास माजूर से होगा, जबकि कांस्य पदक के लिए सुकांत का मुकाबला इंडोनेशिया के फ्रेडी सेतियावान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।